दिन भर 10 मई बुधवार, मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। कुलभूषण जाधव की फांसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की अपील को पाकिस्तान ने पब्लिसिटी स्टंट बताया।
हमारे पास एक बहुत बड़ी एविडेंस है जो हम इंटरनेशनल फोरम से प्रेजेंट भी कर चुके हैं। उस चीज को काउंटर करने के लिए दिस इज जस्ट ए मीडिया गिमिक्री।
सुनवाएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ से एक बातचीत। भारतीय सेना के कश्मीरी फौजी अफसर की मौत की जांच का हुक्म दिया सरकार ने, और अथाह तेल संपदा के बावजूद वेनेजुएला क्यों है बुरे दौर में।
के गरीबों को बहुत कुछ मिला, हेल्थ के तौर पे क्लिनिक्स उन्होंने बनाए, सरकारी पैसे के साथ घर बनाए, बहुत कुछ किया काम उन्होंने गरीबों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। भारत के कथित जासूस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई मौत की सजा पर नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कथित खबरों के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस फैसले की समीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में जाँच कर रहा है और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय इस बारे में एक या दो दिन में अपना बयान जारी करेगा। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस का कहना है कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई है। सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बीबीसी को बताया कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या तब की गई जब वे छुट्टी लेकर अपने घर कुलगाम गए हुए थे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इस घटना की निंदा की है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार देने के अमरीका के फैसले पर तुर्की ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमरीकी सेना का कहना है कि सीरिया में कुर्द लड़ाके एकमात्र ताकत हैं जो जमीन पर लड़ रहे हैं, जो रक्का को इस्लामिक स्टेट से छुड़ा सकते हैं, लेकिन तुर्की कुर्द लड़ाकों को विद्रोही मानता है। इसके जवाब में अमरीकी रक्षा मंत्री जनरल जेम्स मैटिस ने कहा,
तुर्की इज अ नेटो एलाई, इट्स द ओनली नेटो कंट्री दैट कन्फ्रंट्स एन इंसर्जेंसी इन इट्स ओन ग्राउंड।
तुर्की नेटो का सहयोगी है, तुर्की नेटो का एकमात्र सहयोगी है जिसकी अपनी जमीन पर संघर्ष हो रहा है। तुर्की की सुरक्षा के लिए हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, हम विकल्पों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ये थे अमरीकी रक्षा मंत्री जनरल जेम्स मैटिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन ने कोरियाई प्रायद्वीप के मौजूदा हालात को सुरक्षा के लिए संकट बताया है और कहा है कि इस संकट के समाधान के लिए वे उत्तर कोरिया जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। मून जे इन के सलाहकार प्रोफेसर जांग कुन चोई ने बीबीसी से कहा कि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के दरवाजे खोलना चाहता है।
वी डोंट वांट टू टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग बट Without
हम बस यूं ही दिखाने के लिए बात नहीं करना चाहते। हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं जिनसे पता चले कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम पिछले 10 साल से कैसा चल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उत्तर कोरिया के लोग क्या सोच रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम बात करना चाहते हैं। ये थे दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन के सलाहकार प्रोफेसर जांग कुन चोई के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से वॉशिंगटन में मुलाकात कर रहे हैं। सर्गेई लावरोव इसके बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। दोनों ही मुलाकातों में सीरिया के मुद्दे पर प्रमुखता से बातचीत होने की संभावना है। रूस ने सीरिया में संघर्ष में कमी लाने के इरादे से सेफ जोन बनाने की बात की है। रूसी विदेश मंत्री इस योजना पर अमरीका का समर्थन चाहते हैं। मुलाकातों का यह सिलसिला ऐसे समय हो रहा है जब अमरीका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक जेम्स कोमी को पद से हटाने का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि जेम्स कोमी ने भरोसा खो दिया है और अब उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को एफबीआई का निदेशक बनाया जाएगा जो भरोसे को दोबारा कायम कर सके। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में हर साल मार्च निकालने वाले आयोजकों का कहना है कि उन्हें इस साल मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई। इसकी वजह राजनीतिक कारण बताए जाते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा के शाम के कार्यक्रम दिन भर में स्वागत है आपका। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को पाकिस्तान ने पब्लिसिटी स्टंट बताया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत की गुहार पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कदम उठाया है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान से कथित भारतीय जासूस के फांसी पर रोक लगाने को कहा है, मगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस विषय में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से सुने पूरा ब्यौरा।
भारतीय मीडिया के मुताबिक हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मामले में पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कुलभूषण जाधव को सभी विकल्पों पर विचार करने से पहले फांसी न दे, मगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत सरकार के अनुरोध पर कदम उठाए हैं। अब पाकिस्तान का रुख क्या होगा ये बताना मुश्किल है। उनका कहना था कि चार कारणों से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया है। पहला कारण ये था कि पाकिस्तान के जरिए भारत को काउंसलर सेवा मुहैया कराने से इनकार करना। दूसरे, कुलभूषण जाधव से संबंधित चार्जशीट जैसे कानूनी दस्तावेज की कॉपी देने से पाकिस्तानी सरकार का इनकार कर देना। तीसरे, जाधव की मां ने पाकिस्तान से जो अपील की थी उस पर पाकिस्तान की खामोशी। और चौथा कारण था कि कुलभूषण जाधव के परिवार वालों को पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आखिर जाकर क्या कहा, इस पर भारतीय प्रवक्ता गोपाल बागले कहते हैं,
तत्काल जो ये उनके खिलाफ मृत्युदंड घोषित किया गया है पाकिस्तान में, उसको सस्पेंड किया जाए। और इस दौरान जो दंड दिया था मिलिट्री कोर्ट ने, जो कि वियना कन्वेंशन का के विपरीत है, सरासर विपरीत है, ऑल्सो वो मानवाधारों के जो मूलभूत मानवाधार हैं उनके भी विपरीत है, तो उसके संदर्भ में भी हमको रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान पर रोक लगाई जाए कि वो कोई भी इस तरीके का काम ना करे जिससे कि कोई भी इस जो मृत्युदंड दिया गया है मिलिट्री कोर्ट द्वारा उसको प्रभाव में लाया जा सके, उसका क्रियान्वयन किया जा सके। अगर पाकिस्तान ये फैसले को पलटने में कामयाब नहीं होता या नहीं करता है, तब फिर कोर्ट जो है उसके इस फैसले को, जो मृत्युदंड का फैसला है, उसको गैर कानूनी घोषित करे।
उधर पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से पाकिस्तानी अदालत को कोई आदेश नहीं मिले हैं और न ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सलाहकार सरताज अजीज का कहना था कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तानी अदालत को फांसी की सजा अंजाम देने से रोक सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हॉलैंड के शहर हेग में हुई थी। इसकी वेबसाइट के अनुसार इसका काम राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से एक न्यायाधीश भारत से है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के एक मिलिट्री कोर्ट के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान का इल्जाम है कि जाधव भारत के जासूस थे। ICJ के जरिए लगाई गई रोक के मामले में पाकिस्तान का कहना है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से किसी तरह का कोई खत मौसूल नहीं हुआ, यानी नहीं मिला है। इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता फरहत जावेद ने बात की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से।
बुनियादी तौर पे इंडिया इसको इंटरनेशनलाइज इसलिए कर रहा है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का उन पे इल्जाम है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इवन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। और ये एक वाज़ह सबूत है और इस बेसिस के ऊपर हमने जो मुकदमा चलाया और जो कन्विक्शन हुई वो हमारे पास एक बहुत बड़ी एविडेंस है जो हम इंटरनेशनल फोरम से प्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए दिस इज जस्ट ए मीडिया गिमिक्री, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर ہماری انڈیا کے ساتھ ارینجمنٹ ہے کہ کن کن فورم پہ ہم اس چیز کو لے جا سکتے ہیں اور کن کن فورم پہ نہیں لے جا سکتے اور کون سی کنونشنز جو اپلیکیبل ہیں اور کون سی نہیں اپلیکیبل. لیٹ آئی سی جے ریسپونڈ ٹو دیئر پٹیشن اینڈ وی ول اکارڈنگلی جو بھی ہمارے جو لیگل رائٹس ہیں یا جو بھی ایز اے اسٹیٹ ہمارے رائٹس ہیں ہم وہ ایکسرسائز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کوئی اس میں ہمیں کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں کوئی ایسی انکروچمنٹ ہوگی جو ہماری جو سوورنٹی ہے یا ہمارا جو یہاں پہ جنگ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف اس میں کوئی رکاوٹ بن سکے. اور ان کا جب رسپانس آئے گا تو ہم اس کے بعد جو ہے اس کی لیگل پوزیشن جو ہے نا وہ ایگزامن کر کے اس کو اسی طرح رسپونڈ کریں گے. میں نے جس طرح ہمارے انڈیا کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ کون سی کنونشنز جو ہیں اپلیکیبل ہوں گی نیشنل سیکورٹی کے مسئلے پہ کون سی نہیں ہوں گی, تو یہ ایک بائی لیٹرل ہماری آلریڈی ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہے. اور وین ایور ہمیں رسپانس موصول ہوتا ہے آئی سی جے سے ہم اس بیک ڈراپ میں اس کانٹیکسٹ میں ان ساری چیزوں کو ایگزامن کریں گے. میں اس وقت کسی اس کے لیگل اسٹیٹس پہ کمنٹ کروں تو میرا خیال ہے یہ پیش از وقت. ہمارے دشمنوں کو سپانسر یا ان کا جو کفیل ہے وہ بھارت ہے اور بھارت ہمیں انگیج رکھنا چاہتا ہے ایک لو انٹینسٹی وار میں.
یہ تھے پاکستان کے رکشا منتری خواجہ آصف, ان سے اسلام آباد میں بات کی تھی بی بی سی سنواداتا فرحت جاوید نے.
بی بی سی ہندی ریڈیو پر بدھوار کو دنیا جہاں
انتراشٹری خبروں کے پیچھے کا سچ,
شکروار کو اتہاس کی پرتیں کھولتی ویویچنا
اور شنیوار کو آپ کی آواز انڈیا بول.
اور اب بات کرتے ہیں بھارت پرشاست کشمیر کی, جہاں پولیس کے مطابق فوج کے ایک ادھیکاری کی دکشنی کشمیر کے شوپیاں میں ہتیا کر دی گئی ہے. بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ چرم پنتھیوں نے یوا آرمی افسر عمر فیاض کا قتل کر دیا. عمر فیاض کشمیر کے ہی رہنے والے تھے اور فوج کے مطابق وہ چھٹیوں پر تھے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی شری نگر میں بی بی سی سنواداتا ریاض مسرور سے اور پوچھا کہ اس معاملے پر کیا کسی سنستھا یا کسی سنگٹھن نے کسی طرح کی ذمہ داری لی ہے.
جی دیکھیں, ابھی تک تو اس کی ذمہ داری کسی بھی چرمپنتھی گٹ نے نہیں لی ہے, لیکن پولیس اور سینا نے دو الگ الگ وقتوں میں بتایا ہے کہ انہوں نے ایک فاسٹ ٹریک انکوائری اس میں شروع کی ہے اور وہ ان لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو پہلے ان کا اپہرن کیا اور اس کے بعد ان کی ہتیا کر دی.
ریاض مسعود صاحب, یہ بتائیں کہ بھارتی سینا جو موجود ہے کشمیر میں اس کے اوپر اس طرح کے واقعے کا کس طرح کا پربھاؤ پڑتا ہے یا کیا منوویگیانک استھتی ہو سکتی ہے آپ سے لوگوں کی اگر بات چیت ہوئی ہو.
جی دیکھیں, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں بارڈر پہ تو ہوتی رہی ہیں, لیکن اس طرح سے چونکہ سینا اور دوسرے اردھ سینک بلوں میں, خاص طور سے پولیس تو ہے ہی یہاں کی لوکل, لیکن اردھ سینک بلوں اور سینا میں بڑی تعداد میں یہاں کے کشمیری یوا جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے بھرتی ہو رہے ہیں. اور کچھ تو اب چونکہ یہ جو مارے گئے ہیں فیاض پرے, عمر فیاض پرے, یہ نیشنل ڈیفینس اکیڈمی سے کوالیفائی انہوں نے کیا تھا 6 مہینے پہلے 12ویں جماعت کی ککشا پاس کرنے کے بعد. تو یہ پہلا موقع ہے, پہلی ایسی گھٹنا ہے جس سے ایک بھیسا پھیل گیا ہے. اور خاص طور پہ یہ ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ دکشنی کشمیر میں ہی ملیٹنسی زیادہ ہے, الگاواد زیادہ ہے, اور دکشنی کشمیر سے ہی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں سینا میں. اس طرح سے یہ گھٹنا جو ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ کرے گا اس سارے ٹرینڈ کو.
ریاض مسعود صاحب, ایک آخری سوال یہ جاننا چاہیں گے کہ چونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کہ مارے گئے ادھیکاری جو عمر فیاض صاحب تھے وہ کشمیری تھے, کتنے کشمیری ہوں گے فوج میں, یا یہ بتائیے کہ بھارتی فوج اس طرح کے لوگوں کی رکشا کے لیے کس طرح کے احتیاط برتتا ہے.
جی دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہوگا 2016 میں بھی یہاں بڑے پیمانے پہ الگاؤوادی آندولن چھڑا اور جاڑے میں تھوڑا سا پاز ہوا ہو, تو اس سال آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو اپ چناؤ ہونے تھے اس کے بیچ میں ہی ہنسا بھڑک اٹھی, پردرشن ہوئے, اور اس کے بعد کئی ایسی گھٹنائیں گھٹی دکشنی کشمیر میں جہاں پہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملیٹنٹس رات کو پولیس والوں کے گھروں میں گھس کر ان کو وارننگ دیتی ہے, ان کے گھر والوں پریوار والوں کو ہیرس کرتے ہیں. تو اس کے بعد باقاعدہ سرکاری طور پہ ایک ایڈوائزری جاری کی گئی پولیس کی طرف سے کہ جتنے بھی پولیس کے جوان یا افسر دکشنی کشمیر کے 4 ضلعوں میں رہتے ہیں وہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک گھر نہ جائیں. لیکن ابھی تک سینا بھی اس بات کا جواب نہیں دے رہی ہے کہ اتنا ہائٹنڈ الرٹ ہونے کے باوجود ایک آفیسر کو کس طرح سے دکشنی کشمیر کے ایسے ضلعوں میں بنا ہتھیار کے یا بنا گارڈ کے گھومنے کی اجازت دی گئی, جبکہ انہی ضلعوں میں پچھلے 2 ہفتوں میں کئی حملے ہوئے ہیں سینا پر بھی اور پولیس پر بھی.
بھارت پرشاست کشمیر میں فوج کے ایک اعلی افسر کی ہتیا، پورا بیورا دے رہے تھے بی بی سی سنواداتا ریاض مسرور شری نگر سے۔ آپ ہمارے سارے کاریکرم ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ اور بی بی سی فیس بک پیج پر لائیو سن سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کی، جہاں بہوجن سماج پارٹی نے اپنے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سے ایک نسیم الدین صدیقی اور ان کے بیٹے کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ نسیم الدین پر پارٹی ورودھی گتیویدھیوں میں لپت ہونے اور چناؤں میں پیسے لینے کا الزام ہے۔ نسیم الدین سے پارٹی نے کچھ دنوں پہلے ہی مہتوپورن ادھیکار چھین لیے تھے اور پارٹی میں ان کا قد کہا جا رہا تھا کہ کم کر دیا تھا۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہیں لکھنؤ سے سمیر آتمج مشر۔
بی ایس پی کے راشٹریہ مہا سچیو ستیش چندر مشر نے بدھوار کو اچانک پریس کانفرنس بلائی اور اس میں پارٹی کے ایک دوسرے بڑے نیتا کو نشکاست کرنے کا فیصلہ سنایا۔
شری نسیم الدین صدیقی کے اس پارٹی ورودھی کاریہ و انوشاسن ہینتا کو پارٹی نے بہت گمبھیرتا سے لیا، کیونکہ یہ سروجت ہے کہ بہوجن سماج پارٹی پورے دیش میں اپنے انوشاسن کے لیے مانی و جانی جاتی ہے، تتھا اسی کارن پارٹی نے شری نسیم الدین صدیقی و ان کے پتر افضل صدیقی کو پارٹی سے نشکاسن کرنے کا نرنے لیتے ہوئے انہیں پارٹی کے سبھی پدوں سے ہٹاتے ہوئے پارٹی سے نشکاست کر دیا ہے۔
ستیش چندر مشر نے کہا کہ نسیم الدین صدیقی بلانے پر بھی نہیں آئے اور اسے پارٹی میں انوشاسن ہینتا مانا گیا ہے۔ نسیم الدین صدیقی پر آروپ ہے کہ انہوں نے پشچمی اتر پردیش میں بڑی سنکھیا میں بے نامی سمپتی کھڑی کی اور بوچڑ خانے لگائے ہیں۔ نسیم الدین کے ساتھ ہی ان کے بیٹے افضل صدیقی کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ یو پی ودھان سبھا چناؤ میں بی ایس پی کی ہار کے بعد سے ہی نسیم الدین صدیقی پر کارروائی کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ چناؤ پرینام آنے کے کچھ دن بعد ہی نسیم الدین صدیقی کے پر قطر دیے گئے اور انہیں مدھیہ پردیش میں بی ایس پی کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ نسیم الدین کے سمرتھن میں پارٹی کے کئی نیتاؤں نے بھی بی ایس پی چھوڑنے کی گھوشنا کی ہے اور کچھ کو پارٹی نے نکالا بھی ہے۔ ان میں پورو ایم ایل سی پردیپ سنگھ بھی شامل ہیں۔ حالانکہ جانکاروں کا کہنا ہے کہ نسیم الدین صدیقی کو باہر کرنے سے بی ایس پی کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ ورشٹھ پترکار یوگیش مشر کہتے ہیں،
مایاوتی نے چہرے ضرور رکھے ہیں پر ان چہروں کو نیتا نہیں بننے دیا ہے، اور مایاوتی کے پاس جتنے بھی لیڈر ہیں جس بھی پارٹی کے ہیں، جیسے بابو سنگھ کشواہا نکلے اور بی جے پی میں گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا، سماج وادی پارٹی میں گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بسپا کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نسیم الدین صدیقی کے ساتھ بھی بالکل ایسی گھٹنا ہوگی۔ انہوں نے نام رکھے ہیں، چہرے رکھے ہیں، جاتیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پر جاتی کے لیڈر نہیں ہیں۔ بسپا میں ایک لیڈر تھے سوئم شاد موریا، کیونکہ وہ سماج وادی پارٹی سے اور دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے گئے تھے۔ جو اوریجنل بسپا سے بنے ہیں لوگ ایمرج کیے ہیں لیڈر کے روپ میں، جنہیں کاشی رام اور مایاوتی جی نے ایمرج کرایا، وہ اگر کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو نہ تو ان کا فائدہ ہوتا نہ پارٹی کا نقصان ہوتا ہے۔
یو پی ودھان سبھا چناؤ کے دوران بی ایس پی کا سوشل میڈیا نسیم الدین کے بیٹے افضل صدیقی کی دیکھ ریکھ میں تھا۔ 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں کھاتا بھی نہ کھول پانے والی بی ایس پی ودھان سبھا چناؤ میں بھی صرف 19 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی۔ نسیم الدین صدیقی نہ صرف پارٹی کے راشٹریہ مہا سچیو تھے بلکہ بی ایس پی سرکار میں ان کے پاس اہم وبھاگ بھی تھے۔ پارٹی نے ان کے خلاف تمام آروپ لگائے ہیں اور اب نسیم الدین صدیقی بھی کل لکھنؤ میں بی ایس پی نیتا مایاوتی اور مہا سچیو ستیش مشر کے خلاف آروپوں کا پٹارا لے کر جنتا کے سامنے آنے کی تیاری میں ہیں۔ سمیر آتمج مشر، بی بی سی لکھنؤ۔
قریب دو دشک پہلے ہیوگو چاویز نے جس وینیزویلا کو کرانتی کے رتھ پر سوار ہو کر تیل کمپنیوں کے مکڑ جال سے باہر نکالا تھا، وہ بدحالی اور مشکلوں کی ایک ایسی آندھی میں گرا ہے جس کے سامنے بچاؤ کے لیے کوئی دیوار نظر نہیں آتی۔ دنیا جہان میں نکھل رنجن نے آج یہی جاننے کی کوشش کی ہے۔
دنیا جہان،
دنیا کے راشٹر پرمکھوں کی جماعت میں ایسے کم ہی نیتا ملیں گے جو اپنے انگرکشکوں، ویٹروں اور دوسرے سہائکوں کو سارجنک روپ سے باہوں میں بھر لیتے ہوں۔ وینیزویلا کے پورو راشٹرپتی ہیوگو چاویز اپنی انہی اداؤں سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے۔ حالانکہ غریبوں کے پرتی ان کی ہمدردی کا صرف ایک یہی روپ نہیں تھا۔ وینیزویلا کی باگڈور سنبھالنے کے بعد انہوں نے بہو سنکھیک جنتا کو مکھیہ دھارا میں لانے کے لیے سرکاری خزانے کا منہ کھول دیا۔ ان کی صحت، شکشا اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیل کمپنیوں سے راجسو میں بڑی حصے داری مانگی اور کھلے دل سے لوگوں پر اسے خرچ کیا۔ وینیزویلا میں भारत के राजदूत रहे दीपक भोजवानी।
जब से वो चावेज प्रेसिडेंट बने थे तब से लेकर उन्होंने पूरा नक्शा बदल दिया था, राजनीतिक नक्शा बदल दिया था। काफी कंपनी नेशनलाइज हुए, टैक्सेस बढ़ाए गए और बहुत ही आमदनी आई मुल्क को। अब बात यह है कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट की वो ऐसी पॉलिसीज थी जैसे कि गरीबों को बहुत कुछ मिला। हेल्थ के तौर पे क्लिनिक्स उन्होंने बनाए सरकारी पैसे के साथ, घर बनाए, बहुत कुछ किया काम उन्होंने गरीबों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं। ये सारे तेल के पैसे जो जा रहे थे खर्चे में और बाहर के लोग जैसे डॉक्टर्स टेक्नीशियन सारे आ रहे थे और काम कर रहे थे सारे बाहर के इंडस्ट्री से, तो अपनी इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप नहीं की खास और बस इसी रास्ते पे चलते गए। ये समझते कि भाई तेल की तो आमदनी आ रही है और इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
सामाजिक क्षेत्र में इस दरिया दिली ने चावेज को तेल के धनी देश का मसीहा बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जब तक चढ़ती रहीं तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन गिरती कीमतों ने वेनेजुएला के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। महंगाई आसमान पर है, रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल का उत्पादन दिनों दिन कम होता जा रहा है।
अब जब तेल के दाम गिरे और ह्यूगो चावेज खुद गुजर गए 2013 में फरवरी के महीने में, तो उसके बाद उनके जो जगह है उन्होंने खुद सब मुल्क से कहा कि मिस्टर मडुरो जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे या मेरी जगह वो लीडर बनेंगे। तो मडुरो जी बन गए, उन्होंने इलेक्शन भी जीत लिया लेकिन इलेक्शन बहुत कम मार्जिन से जीता, बहुत पॉपुलर नहीं थे उस टाइम पे भी और उसकी पॉपुलैरिटी और भी घटती गई। और जैसे आमदनी मुल्क की घटती गई उसी हिसाब से उनकी भी पॉपुलैरिटी घटती गई और आजकल वो इतने ही अनपॉपुलर हैं क्योंकि लोगों का हाल ऐसा खराब हुआ है क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे। जैसे मैंने आपसे कहा इंडस्ट्री लोकल तो खास कुछ है ही नहीं और जो भी बन रहा था वहाँ पे चाहे ब्रेड चाहे कपड़े जो भी बन रहा था वहाँ पे वो भी अब तो खासकर जैसे समझो बंद ही हो गया है। तो इम्पोर्ट से डिपेंडेंट है लेकिन उनके पास आमदनी नहीं है। हिंदुस्तानी मेडिसिन जो बिक रहे हैं वहाँ पे उनको पैसे नहीं वसूल हो रहे हैं।
जानकार बताते हैं कि वेनेजुएला में सऊदी अरब से ज्यादा बड़ा तेल का भंडार मौजूद है। हालांकि यहाँ के तेल की किस्म थोड़ी अलग है और उसे इस्तेमाल के लायक बनाने की प्रक्रिया कुछ लंबी और खर्चीली है। यही वजह है कि दूसरे देशों की तुलना में यहाँ कच्चे तेल की कीमत और कम है। भारत समेत दुनिया भर की कंपनियां यहां तेल की खुदाई में शामिल हैं। ह्यूगो चावेज ने सुधारों को लागू कर तेल कंपनियों को भी अपने नियंत्रण में लिया लेकिन कोई और उद्योग यहां खड़ा नहीं हो सका। यहां के लोगों के पास ना तो काम है और ना ही आमदनी का दूसरा कोई जरिया। ऐसे में इस वक्त यहां बदहाली अपने चरम पर है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे इसके लिए विदेशी कंपनियों और देश के मध्यम वर्ग को जिम्मेदार मानते हैं।
एक तो जैसे तेल के कीमतें गिरी तो सरकार को लगा कि उनका खर्चा तो बहुत ज्यादा था, जो जिम्मेदारियां थी खर्चे की सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी। दूसरा फैक्टर ये और ये सच बात है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि जो तेल की कंपनियां हैं और एंटी चावेज जो मध्य वर्ग है वेनेजुएला में, उन्होंने पूरा एक आर्थिक सिविल वॉर या आर्थिक गृहयुद्ध छेड़ रखा है। आर्थिक व्यवस्था कभी भी चरमराती नहीं अगर ये लोग जरा पॉजिटिवली काम करते। जो मादुरो का कह रहे हैं कि अपोजिशन ने पूरा सेबोटाज कर रखा है जिसमें ऑयल एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और वहां का जो मध्य वर्ग जो पिछले 60 साल से जिसने तेल के मुनाफे को लेकर के उस पर अपनी मोनोपोली जमा रखी थी, ये वो लोग जिम्मेदार हैं।
चावेज के दौर में तेल कंपनियों के प्रबंधन में भी भारी फेरबदल हुआ। विदेशी और पेशेवर लोगों को हटाकर चावेज ने स्थानीय और अपने भरोसेमंद लोगों को अहम पदों पर बिठाया। अब वहां तेल से जुड़े मामलों में पीडीवीएस से फैसला करती है लेकिन फिलहाल वो खुद अपने कर्जे चुकाने में असमर्थ है।
उनकी जो सरकारी कंपनी है पीडीवीएसा में बहुत सारे काबिल लोग थे लेकिन उनको हटाया गया जब 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक बगावट हुआ और 3 दिन के लिए चावेज को हटाया गया और नया शासन मतलब बू जैसा बना था, तो नए शासन वाले वो आ गए थे और ऐसे वैसे कर रहे थे, तो ह्यूगो चावेज वापस आ गया क्योंकि फौज ने उसको वापस लाया। जब फौज वापस लाई उसे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो पीडीवीएसा में पुराने शासन के चमचे लोग हैं बिठाए गए उनके तरफ से और बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं, तो कुछ 18,000 उनके टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन जो साइंटिस्ट जो हैं उनको हटा दिया गया। तो जो पीडीवीएसआ कर पा रहा था उस जमाने में वो भी नहीं कर पाया, सब फॉरेन कंपनीज पे उनको डिपेंड करना पड़ा। अब फॉरेन कंपनीज जब आएंगे तो नफा देख के आएंगे, तो कंपनीज ने कहा अच्छा ठीक है क्योंकि है तेल यहाँ पे तो हम बैठेंगे और करेंगे। लेकिन फिर चावेज ने शुरू कर दिया अपना वो पॉलिसी कि भाई सब हमारे हाथ में रहना चाहिए। तो खास तौर पे अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने भगा दिया, एक्सप्रोप्रिएट कर लिया, नेशनलाइज कर दिया। अब जब आप फॉरेन कंपनीज को भगा दोगे, अगर आपके बस की बात नहीं है तेल निकालना और तेल बेचना और तेल रिफाइन करना, तो फिर हाल तो वही होगा जो वेनेजुएला का हुआ, जहां प्रोडक्शन 30 लाख बैरल दिन के अब 2.5 लाख बैरल भी नहीं निकल रहे हैं।
हालांकि चावेज की नीतियों के कारण ही भारत और कई दूसरे देशों की कंपनियों को वेनेजुएला में आने का मौका भी मिला।
चावेज ने देखिए सोशल सेक्टर पर ज्यादा खर्च किया, लेकिन साथ साथ बहुत सारी नए नए जो ऑयल फील्ड से उनके ठेके भी दी, नई नई कंपनियों को बुलाया भी। ये चावेज की ही हिम्मत थी कि जिसके कारण ONGC विदेश, रिलायंस इंडस्ट्री, SR इस तरह की जो भारतीय कंपनियां हैं वो वेनेजुएला की मार्केट में दाखिल हो पाई। उससे पहले तो दाखिल ही नहीं हो पाती थी, अमेरिकन और कनाडियन और ब्रिटिश कंपनी का इतना दबदबा था वहां।
संकट के इस दौर में वेनेजुएला के लोग देश की राजनीति को भी नकारात्मक भूमिका में देख रहे हैं। सत्ता की बागडोर अब चावेज के करीबी रहे मदुरो के हाथ में है और उनसे ना तो राजनीति संभल रही है ना तेल कारोबार। नेशनल असेंबली में विपक्षी दलों का बोलबाला है, ऐसे में मदुरो ने जब अपने लिए अधिकार बढ़ाने की कोशिश की तो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। चावेज ने मदुरो को अपना उत्तराधिकारी तो बनाया, लेकिन उनमें वो करिश्मा नहीं भर सके जो मुश्किलों का हल निकालने में सक्षम हो।
मादुरो भी एक्सट्रीम पर जा रहे हैं, अपोजिशन गैर जिम्मेदार है, अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट भी गैर जिम्मेदाराना कदम उठाते जा रहे हैं। मध्य रास्ता मुझे समझ में नहीं आता, पोप ने कहा था कि वो बीच में कुछ मेडिएशन करवा देंगे, उसके मेडिएशन को सुनने के लिए अपोजिशन के लोग तैयार नहीं है। अभी तो ये है कि मादुरो को हटाओ, मादुरो के तो मैं नहीं हटूंगा, चाहे उस चक्कर में देश भाड़ में जाए। संविधान में वहाँ एक प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट जो है पब्लिक सेक्टर या स्टेट को बचाने के लिए एक नए संविधानिक सभा को बुला सकता है। अब दिस इज एक्सट्रीम स्टेप, ही इज टेकन वेरी सैड। अभी 1999 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब आप फिर दोबारा बनाने जा रहा हो। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो गया, कोई फैशन की कमीज हो गई, जब चाहे बदल लो। ये मादुरो से गलती हुई है यहाँ पर।
मदुरो की नीतियों का विरोध देश के बाहर भी हो रहा है। लातिन अमरीकी देशों के साथ ही अमरीका भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कमजोर पड़ने से चिंता में है और प्रतिबंधों के रास्ते तलाश रहा है। वेनेजुएला का संकट पड़ोसी देशों के लिए भी मुसीबत बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता तेल के भंडार को लेकर ही है। ऐसे बुरे हाल में कोई और मजबूत नेता भी नजर नहीं आता जो मुश्किलों के हल का कोई रास्ता निकाल सके।
कुछ 15-20 साल से हम देखते आ रहे हैं कि ऑपोजिशन कोई खास है ही। पहले दो बड़ी पार्टियां थी, AD और COPE। ये दो पार्टी अपने आप में समझौता करते गए और जब एक ने सरकार चलाई तो दूसरे के भी फायदे हुए और वाइस वर्सा। हुगो चावेज ने अपने इलेक्शन जीती 1998 में इसी शर्त पे कि भी देखो मैं इनको सबको हटाऊंगा, और जीत भी गए क्योंकि लोग बिल्कुल ही परेशान हो गए थे। अब ऑपोजिशन जो है हुगो चावेज के शासन के दौरान कुछ 13 साल तक कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी अपने आप में समझौता नहीं थी, उनकी एकता नहीं बनी और ना कोई ऐसा लीडर सामने आया। लेकिन हाल में 4-5 साल पहले कोई नौजवान लीडर बने हैं, जैसे हेनरी के कैप्रिलिस जिसने मडुरो के खिलाफ इलेक्शन मतलब लड़े 2% से हार गए। वो माने जाते हैं कि भाई मेन लीडर वही हैं जो लोगों को शायद यूनाइट कर सकें।
ह्यूगो चावेज ने आम जिंदगी से राष्ट्र प्रमुख तक का सफर क्रांति के रथ पर सवार होकर किया था, लेकिन मसला देश का हो तो वो सिर्फ अपने करीबियों पर भरोसा करते थे। इसी वजह ने कई लोगों को उनसे और वेनेजुएला से दूर भी किया। अब जब देश मुश्किलों में घिरा है और उनके करीबी मदुरो उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, तो सवाल उनकी नीतियों पर भी उठ रहे हैं। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
एक बार फिर से सुनते हैं BBC समाचार।
BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस का कहना है कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई है। भारत के कथित जासूस कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के संबंध में पाकिस्तान ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में जांच कर रहा है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार देने के अमेरिका के फैसले पर तुर्की ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो संभाला था तिलक भाटिया ने, फैसल मोहम्मद अली और सभी साथियों को दे इजाजत। नमस्कार।